एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, माइकल हॉसिंग की खगोल विज्ञान का इतिहास।
हाँ, ये किताब आपको मतलब सितारों की दुनिया में ले जाती है, लेकिन ये सिर्फ ग्रहों और क्या कहते हैं खोजों की लिस्ट नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी इंसानी जिज्ञासा की कहानी है।
बिल्कुल, कैसे हमने आसमान को देखना शुरू किया, सवाल पूछें, और कैसे उन सवालों ने हमारी दुनिया ही बदल दी।
और ये आज भी जरूरी है समझना, है ना?
हाँ, बहुत जरूरी, क्योंकि ये दिखाता है कि विज्ञान असल में काम कैसे करता है। मतलब ये कोई सीधी लाइन नहीं है, इसमें बहसें हैं, गलतियां हैं, पुरानी सोच को चुनौती देना है।
सही बात, ज्ञान हमेशा बदलता रहता है, विकसित होता है, तो ये बस इतिहास नहीं, ये एक तरह से सोचने का तरीका सीखने जैसा है। चलिए इस सफर पर निकलने से पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें। माइकल हॉस्किन।
हाँ, हॉस्किन वो कोई मामूली इतिहासकार नहीं थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और वो जो जर्नल फॉर द हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी है उसके एडिटर रहे 40 साल से भी ज्यादा।
उन्हें खगोल विज्ञान के इतिहास का पितामह जैसा माना जाता है। उनकी सबसे खास बात थी उनका नजरिया। वो सिर्फ ये नहीं देखते थे कि कौन सही था कौन गलत।
हाँ, वो उस जमाने में जाकर सोचते थे कि भाई उस वक्त लोग क्या पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास क्या जानकारी थी, क्या साधन थे।
बिल्कुल, वो अतीत के वैज्ञानिकों को उनके समय के नायक की तरह देखते थे। ये नहीं कि आज हमें पता है कि पृथ्वी घूमती है तो कॉपरनिकस से पहले सब बेवकूफ थे, ऐसा नहीं।
और उनकी एक और खासियत थी, वो आर्क्यू एस्ट्रोनॉमी, मतलब स्टोनहेंज जैसी पुरानी जगहों को स्टडी करके समझना कि तब लोग आसमान को कैसे देखते थे।
हाँ, और इतने मुश्किल विषय को भी उन्होंने आम पाठक के लिए एक कहानी की तरह बना दिया, ये बड़ी बात है।
तो ये किताब असल में है क्या?
नहीं,
जैसा हमने कहा, ये कोई सूखी टाइमलाइन नहीं है।
नहीं,
हॉस्किन दिखाते हैं कि ये एक इंसानी नाटक है। इसमें कल्चर है, फिलॉसफी है, टेक्नोलॉजी है, और हाँ, गलतियां और बहसें भी खूब हैं।
और वो ये भी बताते हैं कि महान खोजें अक्सर अकेले जीनियस का काम नहीं होती, कई लोगों की मिलीजुली मेहनत होती है।
और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है,
हाँ,
वो शायद ये है कि खगोल विज्ञान ने ही सबसे ज्यादा हमारी सोच बदली है कि हम इस ब्रह्मांड में हैं कहाँ।
सोचिए जरा, पहले हम मानते थे पूरी कायनात हमारे चारों तरफ घूम रही है, पृथ्वी केंद्र में।
हाँ, और फिर पता चला, अरे नहीं, हम तो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। ये कितना बड़ा झटका होगा उस समय।
और कहानी वहां भी नहीं रुकी, फिर पता चला हमारा सूरज भी कोई खास नहीं, हमारी आकाशगंगा में अरबों तारों में से एक, और वो भी एक कोने में।
और फिर ये पता चला कि हमारी आकाशगंगा जैसी अरबों और आकाशगंगाएं हैं। मतलब हर कदम पर ब्रह्मांड बड़ा होता गया और हम छोटे। इसी सोच के बदलाव की कहानी है ये किताब। चलिए, तो अब कहानी के कुछ अहम पड़ावों से गुजरते हैं। शुरू करें?
बिल्कुल, शुरू से।
हाँ, करते हैं। प्राचीन दुनिया और आसमान, हॉस्किन हमें प्रागैतिहासिक काल में ले जाते हैं।
बिल्कुल।
तब आसमान क्या था? शायद एक कैलेंडर।
हाँ, मौसम बताने वाला, खेती के लिए जरूरी।
हाँ,
और वो स्टोनहेंज जैसी जगह, सिर्फ पत्थर नहीं।
बिल्कुल, शायद वो उस जमाने के बड़े परिष्कृत कैलेंडर थे या खगोलीय घटनाओं से जुड़े कोई धार्मिक स्थल।
सोचिए, बिना किसी टेलीस्कोप के वो लोग कितनी बारीकी से आसमान देख रहे थे।
फिर आते हैं मेसोपोटामिया और मिस्र। मिस्र में तो खगोल विज्ञान ज्यादातर प्रैक्टिकल था, जैसे नील नदी में बाढ़ कब आएगी, ये सीरियस तारे से पता लगाते थे।
हाँ,
लेकिन बेबीलोन में कहानी थोड़ी अलग थी, वहां ज्योतिष का बहुत जोर था। तो भविष्य जानने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, सैकड़ों साल तक ग्रहों की चाल का रिकॉर्ड रखा।
कमाल है।
और उस रिकॉर्ड के आधार पर उन्होंने भविष्यवाणी करने के लिए गजब का गणित विकसित कर लिया।
हाँ, ये दिलचस्प है। उन्हें शायद ये परवाह नहीं थी कि ग्रह क्यों घूम रहे, बस ये पता लगाना था कि कब कहाँ होंगे, वो क्या होगा के एक्सपर्ट थे, क्यों होगा के नहीं।
और फिर आते हैं यूनानी, जिन्होंने पूछा क्यों।
हाँ, उन्होंने पौराणिक कथाओं से हटकर पूछा कि भाई इस ब्रह्मांड की असल बनावट क्या है। उन्होंने ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया
और वो भू केंद्रित मॉडल बनाया, पृथ्वी बीच में और सब कुछ सूरज चांद तारे ग्रह उसके चारों ओर परफेक्ट गोल चक्रों में घूम रहा है।
बिल्कुल, पर एक पेच था, ग्रहों की उल्टी चाल, रेट्रोग्रेड मोशन। कभी कभी ग्रह आसमान में आगे जाते जाते अचानक पीछे चलने लगते थे, ये कैसे?
ये तो गड़बड़ थी।
इसे समझाने के लिए उन्होंने बहुत ही जटिल सिस्टम बनाया, एपिसाइकल। आप सोचिए, एक बड़ा पहिया घूम रहा है और उस पहिए पर एक और छोटा पहिया घूम रहा है और ग्रह उस छोटे पहिए पर है।
अरे बाप रे, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है।
हाँ बहुत। टॉलमी नामचे विद्वान ने इसे अपनी किताब अल्मजिस्ट में पक्का किया और ये मॉडल इतना सफल हुआ कि लगभग 1400 साल तक चला।
मानना पड़ेगा, अपने समय के हिसाब से तो ये एक शानदार उपलब्धि थी।
बिल्कुल। अब कहानी आगे बढ़ती है मध्य युग और ज्ञान के सफर की ओर। जब यूरोप में रोमन साम्राज्य के बाद थोड़ा अंधेरा सा था, तब ज्ञान की मशाल जल रही थी इस्लामी दुनिया में।
हाँ, बगदाद से लेकर स्पेन के कॉर्डोबा तक वहाँ के विद्वानों ने यूनानी ज्ञान को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे आगे बढ़ाया।
उन्होंने टॉलमी के मॉडल की कमियों को पहचाना, बेहतर ऑब्जर्वेटरीज बनाई, त्रिकोणमिति जैसे गणित के नए टूल विकसित किए और तारों के ज्यादा सटीक कैटलॉग बनाए।
ये बहुत जरूरी काम था। और फिर यही ज्ञान वापस यूरोप पहुंचा जिसने वहां की वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी।
सही बात, ज्ञान किसी एक जगह नहीं टिकता, वो सफर करता है। और इसी जमीन पर एंट्री होती है निकोलस कोपरनिकस की।
पोलैंड के कोपरनिकस, जिन्हें टॉलमी का मॉडल बड़ा अजीब और जटिल लगता था, उन्हें लगा कि ब्रह्मांड इतना पेचीदा नहीं होना चाहिए।
हाँ, उनका आइडिया एकदम क्रांतिकारी था। क्या हो अगर पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य केंद्र में हो, सूर्य केंद्रित मॉडल।
ये सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय ऐसा सोचना।
इस मॉडल से ग्रहों की वो उल्टी चाल भी आसानी से समझ आ जाती थी। वो सिर्फ एक भ्रम था, जैसे तेज ट्रेन से धीमी ट्रेन पीछे जाती हुई दिखती है।
बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि कोपरनिकस का मॉडल भी शुरू में टॉलमी से ज्यादा सटीक भविष्यवाणियां नहीं कर पाया।
क्यों भला?
क्योंकि कोपरनिकस भी ग्रहों को परफेक्ट गोल चक्करों में ही घुमा रहे थे, जबकि असलियत कुछ और थी। तो आइडिया सही दिशा में था, पर उसे साबित करना और सटीक बनाना बाकी था।
और जाहिर है, ये विचार उस समय की धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ था। इसने तो तूफान खड़ा कर दिया होगा। हाँ, एक बड़ी बहस शुरू हो गई और यहीं से शुरू होता है संकट और समाधान का दौर। कोपरनिकस के आइडिया को सच साबित करने में तीन लोगों का काम बहुत अहम है, टाइको ब्राहे, योहानस केपलर और गैलीलियो गैलीली।
टाइको ब्राहे, वो डेनमार्क वाले रईस खगोल शास्त्री, जिनके पास उस जमाने की बेस्ट ऑब्जर्वेटरी थी।
हाँ, और उन्होंने सालों तक बिना दूरबीन के सिर्फ आंखों से इतने सटीक आंकड़े जमा किए जितने पहले कभी नहीं हुए थे। उनका मानना था कि पक्के डेटा के बिना कोई सिद्धांत नहीं बन सकता।
और उनके डेटा ने ही आगे का रास्ता खोला। फिर आए उनके सहायक योहानस केपलर।
केपलर, गणित के जादूगर। वो कोपरनिकस के मॉडल को मानते थे और उन्होंने टाइको के मंगल ग्रह के डेटा को गोल चक्करों में फिट करने की सालों तक कोशिश की, पर बात बनी नहीं।
कुछ तो गड़बड़ थी।
हाँ, एक छोटी सी लेकिन लगातार रहने वाली एरर उन्हें परेशान कर रही थी। और फिर केपलर ने वो किया जो बहुत हिम्मत का काम था। उन्होंने 2000 साल पुरानी गोल चक्कर वाली धारणा को चुनौती दी।
डेटा के आधार पर?
बिल्कुल। डेटा को देखते हुए उन्होंने पाया कि ग्रह गोल नहीं बल्कि अंडाकार पथों पर घूमते हैं। उन्होंने ग्रहों की गति के तीन नियम दिए। ये विज्ञान के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था, जब डेटा की जीत हुई गणितीय सुंदरता या दार्शनिक विश्वास पर।
वाह। और फिर आए गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने गेम ही बदल दिया।
हाँ, गैलीलियो ने नई नई बनी दूरबीन को आसमान की तरफ घुमाया और जो देखा उसने तो पुरानी सारी सोच की धज्जियां उड़ा दी।
क्या देखा उन्होंने?
उन्होंने देखा कि चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पहाड़ और गड्ढे हैं। मतलब वो कोई दिव्य चिकना गोला नहीं है। उन्होंने बृहस्पति के चार चांद देखे जो पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहे थे।
ओह, ये तो सीधा टॉलमी के मॉडल के खिलाफ गया।
बिल्कुल। और उन्होंने शुक्र ग्रह के फेजेस देखे जैसे हमारे चांद के होते हैं, जो सिर्फ तभी हो सकता था अगर शुक्र सूरज का चक्कर लगा रहा हो। गैलीलियो ने इन बातों को खुलकर लिखा और बहस को आम लोगों तक पहुंचा दिया।
इसके बाद कहानी पहुंचती है न्यूटन और फैलते ब्रह्मांड तक।
हाँ, आइजैक न्यूटन। उन्होंने बताया कि ग्रह क्यों घूमते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम। वही ताकत जो सेब को जमीन पर गिराती है, वही ग्रहों को सूरज के चारों ओर घुमाती है।
उन्होंने जमीन और आसमान के नियमों को एक कर दिया। ब्रह्मांड एक बड़ी मशीन की तरह लगने लगा जिसके नियम हम समझ सकते हैं।
बिल्कुल। फिर 18वीं-19वीं सदी में विलियम हर्शल जैसे लोगों ने बड़ी दूरबीनों से सौरमंडल के पार देखना शुरू किया। उन्होंने हजारों निहारिकाएं, नेब्यूले देखी और हमारी आकाशगंगा का नक्शा बनाने की कोशिश की। ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगना शुरू हुआ।
और फिर आई स्पेक्ट्रोस्कोपी, तारों की रोशनी का विश्लेषण करके ये पता लगाना कि वो बने किस चीज से हैं।
हाँ, ये खगोल भौतिकी की शुरुआत थी। अब खगोल विज्ञान सिर्फ कहाँ का नहीं, क्या का विज्ञान भी बन गया।
और फिर 20वीं सदी, वो महान बहस हुई कि वो निहारिकाएं क्या हैं, हमारी आकाशगंगा के अंदर के बादल या बहुत दूर की आकाशगंगाएं।
और एडविन हबल ने साबित किया कि वो हमारी जैसी ही दूसरी बहुत दूर की आकाशगंगाएं हैं। अचानक ब्रह्मांड का साइज करोड़ों गुना बढ़ गया।
दिमाग घूम जाता है सोचकर।
और हबल ने एक और खोज की कि ये सारी आकाशगंगाएं हमसे दूर भाग रही हैं, ब्रह्मांड फैल रहा है। यहीं से बिग बैंग थ्योरी का जन्म हुआ और आज हम डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जैसी नई पहेलियों से जूझ रहे हैं। कहानी जारी है।
कमाल की कहानी है ये। तो इस पूरी यात्रा से हॉस्किन कुछ अहम विषय और संदेश निकालते हैं। पहला तो ये कि ज्ञान जुड़ता जाता है।
हाँ, संचयी प्रकृति, क्यूमुलेटिव नेचर। ऐसा नहीं कि हर नई खोज पुरानी को बेकार कर देती है, बल्कि पुरानी नींव पर ही नई इमारत बनती है। न्यूटन भी केपलर और गैलीलियो के काम पर ही खड़े थे।
दूसरा, तकनीक की ताकत, ये तो साफ दिखता है। दूरबीन, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप, हर नया औजार हमें कुछ नया दिखाता है।
बिल्कुल, टेक्नोलॉजी एज अ ड्राइवर, तकनीक हमारी आंखों की शक्ति बढ़ाती है।
तीसरा, हमारे सवालों का बदलना, कैसे हम कब से, क्यों, कैसे, क्या और अब कहां से और कहां तक जैसे सवालों पर आ गए हैं। हमारी जिज्ञासा लगातार बढ़ी है।
हाँ, एवोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। चौथा है सिद्धांत, अवलोकन और तकनीक का नृत्य। मतलब ये तीनों चीजें मिलकर आगे बढ़ती हैं। कभी थ्योरी गाइड करती है, कभी ऑब्जर्वेशन थ्योरी को चैलेंज करती है और कभी नई टेक्नोलॉजी दोनों को संभव बनाती है।
सही। और पांचवा जो मुझे बहुत असरदार लगता है ब्रह्मांड में हमारी बदलती हैसियत, वो कॉस्मिक डिमोशन।
हाँ, कॉस्मिक डिमोशन। हम लगातार केंद्र से हटते गए हैं, पृथ्वी केंद्रित, फिर सूर्य केंद्रित, फिर आकाशगंगा के कोने में, फिर अरबों आकाशगंगाओं में से एक।
ये हमें विनम्र बनाता है, दिखाता है कि हम कितने छोटे हैं और ये कायनात कितनी विशाल।
हॉस्किन की किताब ऐसे ही गहरे विचारों और यादगार बातों से भरी है। कुछ खास बातें जो जिक्र करने लायक है?
हाँ, एक तो ये कि खगोल विज्ञान ने ब्रह्मांड में इंसान की जगह के बारे में हमारी समझ को सबसे ज्यादा बदला है। ये छोटी सी लाइन है पर इसका वजन बहुत है। इसने हमारे वजूद के मायने बदल दिए।
बिल्कुल। और एक और बात जो मुझे अच्छी लगी, खगोल विज्ञान का इतिहास सिकुड़ते क्षितिजों का इतिहास है। सुनने में उल्टा लगता है, पर मतलब ये कि हर खोज ने दिखाया है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारा ज्ञान बढ़ा, पर अनदेखा ब्रह्मांड और भी बड़ा हो गया।
और हॉस्किन के अप्रोच का सार, पुराने सिद्धांतों को समझने के लिए ये पूछना जरूरी है कि वो किन समस्याओं को हल कर रहे थे, ना कि वो आज के हिसाब से सही थे या गलत।
ये ऐतिहासिक सहानुभूति सिखाता है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। और केपलर के बारे में वो कहते हैं, केपलर का 2000 साल पुराने गोल चक्रों के विश्वास को छोड़कर टाइको के डेटा पर भरोसा करना विज्ञान के इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक है। ये दिखाता है कि सच के लिए कभी कभी सबसे प्यारी धारणाओं को भी छोड़ना पड़ता है, डेटा सबसे ऊपर। तो इस सब इतिहास से आज की जिंदगी के लिए क्या सबक मिलते हैं? पहला तो शायद यही कि अपनी गहरी मान्यताओं पर सवाल उठाना।
हाँ बिल्कुल। जैसे लोग सदियों तक मानते रहे कि पृथ्वी स्थिर है, वैसे ही हमारी भी कई पक्की धारणाएं हो सकती हैं जो शायद सही ना हो, तो अपनी सोच को जांचते रहना जरूरी है।
दूसरा, बेकार लगने वाले ज्ञान की कीमत। किसने सोचा था कि तारों को देखने से गणित, नेविगेशन और आज की टेक्नोलॉजी निकलेगी?
सही बात है, ये बुनियादी रिसर्च के महत्व को दिखाता है। आज की जिज्ञासा कल की जरूरत बन सकती है।
तीसरा, छोटी छोटी प्रगति और सहयोग का महत्व। अक्सर बड़ी खोजें कई लोगों की सालों की मेहनत का नतीजा होती हैं। टीम वर्क और धैर्य।
चौथा, अनिश्चितता के साथ जीना सीखना। विज्ञान दिखाता है कि हमें कभी सब कुछ पता नहीं होगा, हर जवाब नया सवाल लाता है और ये ठीक है, खोज जारी रहनी चाहिए।
बिल्कुल। और आखिरी, लंबी सोच रखना। जब हम अरबों साल के पैमाने पर सोचते हैं तो अपनी रोज की चिंताएं थोड़ी कम बड़ी लगती हैं, है ना?
हाँ, एक पर्सपेक्टिव मिलता है, धैर्य आता है।
तो अंत में, इस किताब से सबसे बड़ा सबक क्या रहा आपके लिए?
मेरे लिए शायद ये कि विज्ञान सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं, बल्कि एक बहुत ही मानवीय प्रक्रिया है। इसमें जुनून है, गलतियां हैं, बहसें हैं और फिर वो आहा वाले पल भी हैं। ये इंसानी दिमाग की अद्भुत क्षमता की कहानी है।
मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे ये बाहर ब्रह्मांड को समझने की कोशिश असल में अंदर खुद को समझने की कोशिश बन जाती है। हम कौन हैं? हमारा यहाँ क्या मतलब है? ये हमें छोटा भी महसूस कराता है और हमारी समझ की ताकत पर गर्व भी।
सही कहा। ये किताब हमें विनम्र बनाती है, लेकिन साथ ही ऊंचा भी उठाती है। ये दिखाती है कि हमें इस विशाल ब्रह्मांड के नियमों को समझने की अविश्वसनीय क्षमता रखते हैं।
और ये जिज्ञासा को सलाम करती है। हमेशा पूछते रहो, खोजते रहो।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।